تیسویں پارے میں سے ہم جس مقام پہ ہیں وہ ہے سورۃ عادیات، ترتیب کے اعتبار سے 100 نمبر کی سورت ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آج 100 کی سیڑھی پہ قدم رکھ لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ نوٹ کیجئے، 99 سورتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگا، اور انشاءاللہ 14 سورتیں کتنی جلدی ہو جائیں گی۔ یہی ہے دین، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اور اسرا کا فلسفہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب انسان چلتا ہے تو کچھ چیزیں شروع میں جو مشکل لگتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہو جاتی ہیں۔ سورۃ عادیات کا نام بہت ہی انیوژل اور نیا نام ہے، عین دال واو سے اس کا روٹ ہے۔ عدو کہتے ہیں تیزی سے بھاگنے کو، دشمن کو بھی عدو اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان دشمن سے بھاگتا ہے اور دشمن اس سے بھاگتا ہے، لیکن اصل میں اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صفات کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اس وقت میرے اور آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے کلام کا یہ سفر کرنے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، اس صورت کا تھیم ہی یہی ہے کہ بھاگو، دوڑو، ہانپو۔ چل رہے ہو تو دوڑنے لگ جاؤ، دوڑ رہے ہو تو ہانپنے لگ جاؤ، ہانپ رہے ہو تو کانپنے لگ جاؤ، کیونکہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ زندگی کی بہت ساری بہاریں ہم ضائع کر چکے، یا آپ کہہ سکتے کہ زندگی کی بہت ساری بہاریں ہم گزار چکے، اب ہمارے پاس کتنا وقت ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو سورۃ عادیات کا بنیادی تھیم کیا ہے کہ بھاگ بھاگ کر اللہ کے راستے میں نیکیاں کرو، تاکہ جب تم اس دنیا سے اگلی دنیا میں پہنچو تو تمہارے پاس بہت کچھ ہو۔ سورۃ کا نام شروع میں ہی ہے، مکی ہے کہ مدنی ہے، دونوں ہی باتیں ہیں، لیکن اگر آپ انداز پہ غور کریں تو مکی سورت ہے اور مکہ کے بھی ابتدائی دور کی سورت۔ اس کا بیسک ٹاپک یا مضمون کیا ہے کہ انسان حقیقت میں آخرت سے غافل ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناشکر ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناشکری کے رویوں کی بات ہے اس کے اندر، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں مکہ والوں کو وہ نعمت یاد دلائی جو اسلام کی صورت میں ان کے پاس آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کیا تھے اور آپ نے ان کو کیا بنا دیا، کس طرح سے چاروں طرف بد امنی اور ہر طرف خون کا بازار گرم تھا، اس طرح سے چاروں طرف انسان دکھی تھے، اور اتنی زیادہ بری حالت تھی عرب کی کہ رات کو بھی لوگ سو نہیں سکتے تھے، راتوں کو سوتے تو ان کو خوف لگتا تھا کہ رات کے اندھیرے میں ہو سکتا ہے کہ دشمن ہم پر حملہ نہ کر دے، اور ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں بھیجا اور امن اور سکون قائم ہوا، اتنی پیاری نعمت اللہ نے تمہارے شہر میں بھیجی، تم نے اس کی کیا قدر کی؟ اور حقیقت ہے کہ مکہ والوں کو جو سزا ملی وہ صرف دین اسلام کی ناقدری کی نہیں تھی، اس قرآن اور اس کتاب اور صاحب قرآن یعنی محمد رسول اللہ کی ناقدری کی تھی۔ تو یہاں اسی رویے کو بتا کر ہم سب کو بتایا گیا کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو نعمت پانے کے بعد انسان کا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ آئیے سورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور اس میں سے انشاءاللہ ہم اپنے عمل کی باتیں لیں گے۔ سورت کے الفاظ میں ایک ردم بھی ہے اور آپ فیل کریں گے، اگر آپ کو نہیں بھی ترجمہ سمجھ آتا لیکن سننے میں مزہ بہت آتا ہے، وہی انداز ہے، شروع میں خلاصہ اور پھر انشاءاللہ اسی کے اندر سے اپنے لیے عمل کی باتیں پک کریں گے، کیونکہ یہ ساری صورتیں ہیں ہی ایسی، اس کے بیچ میں بولنا ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی کی بات کاٹنا، جب تک کوئی دوسرا شخص بات پوری کر نہ لے ہم اس کی بات پہ روکتے نہیں، تو یہ صورتیں بھی کچھ اسی قسم کی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم۔ امیجینیشن میں لائیے، گھوڑا ہانپ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اور عادیات کا لفظ جہاں جو آ گیا، عادیتن کی جمع، عدوون سے، جیسے غزون ہوتا ہے اس طرح سے عدوون۔ غازیات کا لفظ اگر سنیں تو اسی طرح سے یہ لفظ ہے، مراد کیا ہے؟ تیز رود گھوڑے۔ وَالْعَادِيَاتِ دَبْحًا، دبہن کا لفظ جو ہے دبہن ہانپنے کے معنی میں، ہن ہنانے کے معنی میں، تو گویا کہ دشمن کی طرف جانے والے وہ گھوڑے جو اس راستے میں ہانپتے اور کانپتے ہیں۔ پھر فلموریات قدہن، پھر ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والوں کی قسم۔ گھوڑا جب اپنا پاؤں زمین پہ رکھتا ہے تو اس کی شدت سے، اور دوسری وجہ یہ کہ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے ایک لوہے کی چیز لگی ہوتی ہے تاکہ وہ اور تیز چلے، تو جب وہ سڑک پہ یا روڈ پہ یا کسی بھی راستے پہ کسی پتھر سے ٹکراتی ہے تو جھنکاریاں اٹھتی ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات بتا کے ہم سب کو بتا دیا کہ مغیرات اغارہ یغیرو سے، شب خون مارنا، رات کے وقت دشمن پر حملہ کرنا۔ اردو میں اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا لفظ ہے دھاوا بولنا، اور صبح کے وقت अरब लोग जो थे वो रात के अंधेरे में हमला नहीं करते थे, इसको बुजदिली समझते थे। बहादुर तो थे ना, तो जब सुबह होती तो फिर हमला करते। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो सुबह के वक्त में करते हैं या रात के वक्त में करते हैं, लेकिन याद रखो कि वो घोड़ा अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है जिस पर वो फौजी सवार होते हैं। सोचिए, घोड़ों की ये तारीफें हो रही हैं तो फिर घोड़े पे सवार शख्स की क्या तारीफ होगी। फिर तीसरी आयत में फरमाया, फल मुगीरात सुबहन, फिर सुबह के वक्त धावा बोलने वालों की कसम। यानी घोड़े के एक एक एक्शन के ऊपर अल्लाह ताला ने बात की है, किस तरह से वो निकलता है। मुगीरात, अगारा यगीर से शब खून मारना, और सुबहन सुबह के वक्त। फिर क्या होता है, फासर नबी नकअन, बस उसी वक्त गर्दो गुबार उड़ाते हैं। जब घोड़ा तेजी से दौड़ता है तो उसके पाँव की वजह से कुछ मट्टी उड़ती है ना, उसका इशारा है। असारा का मानी क्या होता है, उड़ाना। असर का लफ्ज सब सुनते हैं, आसार कदीमा मुअसर, और नक अन कहते हैं गर्दो गुबार को। यानी ये घोड़े जिस वक्त तेजी से दौड़ते और धावा बोलते हैं तो उस जगह पर गर्दो गुबार छा जाता है। होता क्या उसके बाद आखिरी अमल, फवसत नबी जम अन, फिर इसी के साथ फौजों के दरमियान घुस जाते हैं। देखिए, पांच आयते हैं और पांच अदाएं हैं। मैं इसको एक्शन नहीं कहती, अदाएं कहती हूँ। अल्लाह ने घोड़े के एक एक एक्शन को यहाँ हमारे सामने पेश करके बता दिया कि जब कोई कदम, चाहे वो किसी घोड़े के क्यों ना हो, और चाहे किसी हाथी के हो, और चाहे किसी ऊंट के हो, चाहे वो किसी इंसान के हो, जब कोई कदम अल्लाह ताला के रास्तों में उठते हैं तो अल्लाह ताला को उन पर इतना प्यार आता है कि वो उसके एक एक एक्शन को संभाल लेता है। जैसे अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को प्रिजर्व कर दिया, लोगों की हिदायत के लिए उसको एक निशानी बना दिया कि जो लोग मेरे रास्ते में खड़े होंगे मैं उनके लिए किस तरह से लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दूंगा, तो सोचिए कि वो रब जब इन घोड़ों की बात हमारे सामने लाता है तो हमारे जहन में जो अगला सवाल आना चाहिए कि जो मुजाहिद इस घोड़े पर सवार है उस पर अल्लाह को कितना प्यार आता होगा। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं हमसे, यही चाहते हैं, बहुत सो चुके, उठो। आप देखिए कि सूरत मुज़म्मिल और सूरत मुद्दसिर की तफसीर में हम ये देख चुके हैं कि या अय्युहल मुज़म्मिल कुम लैला इल्ला क़लीला, और या अय्युहल मुद्दसिर कुम फ़ांज़िर, यानी ओढ़ लपेट कर सोने वाले उठो, सोने का वक्त गया, अब उठो, लोगों को आगाह करो। रातों में अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो और दिन में उसके बंदों से ताल्लुक जोड़ो, तो यहाँ भी यही बात समझ आती है। और हकीकत यह है कि हमारा दीन अमली दीन है। जो एनर्जी और ईमान हम नमाजों की सूरत में हासिल करते हैं और रोजे रख कर लेते हैं, उसको कहाँ दिखाना है, अल्लाह के रास्तों में निकल कर। आज अफसोस की बात है, और अफसोस भी इसलिए कि आज दौरे जाहिलियत इस किस्म का है कि कुरान पढ़ा तो जाता है, समझा नहीं जाता। नमाज पढ़ी तो जाती है, लेकिन उसके बाद वो कुर्ब नहीं आता अल्लाह से, और गुनाहों से वो दूरी नहीं आती जो मतलूब है। नतीजा क्या होता है कि हम नमाज के ऊपर नमाज तो पढ़ते हैं, नफलों पर नफिल भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम उनको अमली तौर पर कहाँ लेकर जाएं। आज के दौर का एक बहुत बड़ा फितना क्या है कि अपने आप को बिठा लो किसी कोने में और अल्लाह का जिक्र करो और अपनी इसलाह करो। कर ली, फिर क्या करना है, नहीं अभी नहीं हुई, अभी और करो, अभी नहीं हुई अभी और करो, अभी नहीं हुई अभी करो, और इतने में मलकुल मौत आ जाएगा, चल दुनिया से निकल। याद रखिए, ये जिंदगी का असूल बना लीजिए कि दिन में पांच नमाजें और बाकी इबादात की सूरत में जो एनर्जी मिलेगी, पहले उससे अपनी जात को फायदा देना है, फिर उसके बाद अल्लाह के बंदों को देना है। सारा नजरिया जिहाद गिर जाता है, सारी तबलीग की कोशिशें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेकार और बेसूद हो जाती हैं अगर लोग घर बैठकर सिर्फ अपने ही ऊपर मुजाहिदे करते रहे। और आज के दौर में ये फितना ऐसे है जैसे बरसात के अंदर से सबजख्त है। हर तरफ आप देखिए कि जिन लोगों ने देखा कि कुरान की कोशिशों से तो इस्लाह होने लग गई, ये तो बेटियों के सरों पे दुपट्टे आ गए, इनके तो कपड़े पूरे होने लग गए, इनकी तो नजरें झुकने लगी, अब शैतान को ये अच्छा लगेगा कोई, फिर वो लोगों के दिलों में ये तो कभी नहीं डालेगा कि ये बुरा काम है, ये करेगा तो लोग उसको एकदम झिड़क के रख देंगे, वो डांटेगा नहीं, वो क्या कहेगा, बहुत अच्छा काम है, लेकिन देखो दूसरों की फिक्र करती हो, खुद क्या, तुम्हारे तो अपने बच्चे खराब हो रहे हैं और तुम्हारे तो अपने ही अमल अच्छे नहीं, फिर क्या करूं मैं। बस ऐसा शक और वहम का कीड़ा डाल देता है कि अल्लाह की बना, जैसे हाईवे पे चलता हुआ बंदा ये भी नहीं कि छोटी रोड पे आ जाए, वो साइड पे गाड़ी खड़ी करके बैठ जाता है और गमजदा होता है कि पता नहीं अभी तक मैंने जो नेकियां या कोशिशें इस रास्ते में की हैं उन्होंने मुझे अल्लाह के यहाँ इतना गुनाहगार तो नहीं कर दिया कि मैं कल अल्लाह के यहाँ जवाबदेह हो जाऊं। और इंसान सब छोड़ छाड़ के किसी जगह बैठ के अपनी इसलाह करने लगता है। हमारा दीन क्या सिखाते है, वला आदियाति दबहन फल मूरियाति कदहन, भागो दौड़ो तड़पो जिंदगी कम है। और हमारे नबी की सारी जिंदगी इसी पे गुजरी। अगर हमारे नबी भी अपनी इबादात में मगन होते तो गारे हिरा छोटी थी, बैठे रहते उसी में। हजरत खदीजा का घर बहुत खूबसूरत था, बैठ जाते उसमें और अपने आप को संवारते रहते। जितनी चोटें पड़ी, जितनी मारें खाई, जितने इल्जाम सहे, जितने अपनों से बेगानगी देखी, वो सिर्फ इस बात पे थी कि वला दी याती दबहन फलमूरी याती कदहन। तो हमारा दीन अमली दीन है। सिर्फ बातें करने से क्या होता है? हम सारा वक्त बैठ के बातें 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 करते रहे, अमल का वक्त आए तो कुछ ना करें। हर वक्त मीटिंग्स मीटिंग्स मीटिंग्स, और जब अमल का वक्त आए तो उस मीटिंग का कोई असर ना दिखे, क्या फ़ायदा? घर बैठ के मेन्यू सेट करते रहे मेहमानों को, क्या खिलाना क्या खिलाना, लेकिन जब मेहमान आए तो उस वक्त फिर कुछ ना खाने को, क्या फ़ायदा होगा? ये जो बैठ के अल्लाह को कहते रहते हैं या का नाबुदु या का नस्ताइन, और ये कहते रहते हैं कि अल्लाह ताला तहियातुलिल्लाहि वस्सलातु, ये इसका क्या मतलब है? और ये जो कहते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका क्या मतलब है अगर हमने अमली तौर पर अल्लाह के रास्तों में नहीं भागना? तो बेअमल बनने से पहले दुआ करे इंसान कि अल्लाह तू मुझे हिदायत के सफर से गुमराह ना करना। इसलिए मुझे और आपको यहाँ ये कसमें दिलाकर याद दिला दिया गया कि तुम भी अल्लाह के रास्ते में भागने वाले दौड़ो। अभी लास्ट दो वीक पहले, मुझे याद नहीं आ रहा, इसी अभी उम्रे के बाद के ट्रिप में मैंने किसी एक घर में सिर्फ इसी एक सूरत पर दर्श दिया है। उसका मतलब ये है कि मेरी दौड़ किस तरफ है, हमारी दुनिया की दौड़ किस तरफ। अगर आप सोचें तो हर रोज़ सुबह लोग उठते हैं और गाड़ियाँ निकलती हैं, जो भी हैं आपके शहर में, आपके अगर स्कूटर नहीं है, रिक्शे नहीं है, कभी अपने मुल्क को सोच लीजिए, किसी हाईवे के किनारे पे खड़े होके ऊपर विंडो से देखिए सब किधर जा रहे हैं। आप भी तो कभी हाईवे पे खड़े होके जब ट्रैफिक में फंसते हैं तो सोचते ही होंगे ना, आखिर ये सारे किधर जा रहे हैं। हर रोज सुबह होती है, शाम होती है, और जिंदगी यूं ही तमाम होती है, आखिर कुछ तो मकसद होगा ना। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या मैं मौत का इंतजार कर रही हूँ? क्या मैं फिर दोपहर के लंच का इंतजार कर रही हूँ, और लंच के बाद अब डिनर खाने के लिए जिंदा हूँ, और डिनर के बाद मैं सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए जी रही हूँ? क्या जिंदगी की दौड़ है? सिर्फ खाना पीना? कल मैं बच्ची थी, अब मेरे बच्चे बच्चे हैं, अब मैं बड़ी हो गई, कल वो बड़े होंगे, कल मैंने कैरियर की फिक्र की थी, आज वो कैरियर की फिक्र में, और आज मैं मौत के करीब हूँ तो कल वो मौत के करीब होंगे। इतने छोटे मकसद के लिए तो अल्लाह ताला ने कायनात का ये कारखाना नहीं सजाया। इसलिए अब अगली आयतों को जरा सुनिएगा और देखिएगा कि अल्लाह ताला का शिकवा कितना बजा है। इतना प्यारा रब जिसने इतना कुछ दिया, इंसान उसकी नेमतों को पाता, दिन रात उसका मुख्ताज है, लेकिन इन्नल इंसान अली रब ही लकनूद, यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा ही नशुक्रा है। कनूद का लफ्ज है, बहुत ही नशुक्रा। ऐसा शख्स कि जो किसी का हक ही ना अदा करे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो दिल से शुक्रगुजार होते हैं, जुबान से नहीं होते, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, बल्कि ज्यादा ऐसे ही होते हैं। हो सकता है तन्हाई में दुआएं भी कर दें, सामने आके अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। आपके अपने बच्चे इसमें होंगे, बाज़ दफ़ा माँ बाप से इतने पर्दे पड़ जाते हैं कि दिल में प्यार करते हैं बच्चे उनसे, लेकिन सामने आके कुछ नहीं करते। लेकिन कुछ लोग होते हैं दिल में कोई शुक्र नहीं होता, लेकिन जुबान पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, ऊपर से चापलूसियां करते हैं, लेकिन उनके अपने अल्फाज जो हैं उनको इस चीज़ की खबर नहीं देते। अल्लाह क्या चाहता है कि ना सिर्फ जुबान ना सिर्फ दिल, करना क्या है? दिल, जुबान और अमल, तीन चीज़ों को मिला लो। कनूद वो शख्स होता है कि जो हद से ज्यादा ही नशुकरा हो। नमक हराम कह लीजिए उर्दू में, बुरा लफ्ज है लेकिन मतलब समझ ही नहीं आता जब तक ये बात ना हो, कि जब तक एक इंसान अपने रब की नेमतों को पाकर उसके रास्ते में भागता और दौड़ता नहीं है तो वो शुक्रगुजारी का हक अदा नहीं करता। बड़ा ही नशुक्र है। अपने ऊपर लेके सोचिए, क्या वाकई मैंने शुक्रिया, क्या वाकई मैंने अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसको उसके रास्ते में लगा दिया? आप देखिए, हर रोज सुबह उठकर हम जो कुछ खाते पीते हैं, जो कुछ लेते हैं, क्या वो हमारा हक होता है? क्या हकीकत में हम इन चीजों को अपने ऊपर ले सकते हैं? कुछ तारीफें कनूत की। हसन बसरी कहते हैं कि वो शख्स, अब ये जो है ना मेरे और आपके लिए चेक लिस्ट है, कहीं मैं तो वो नहीं हूं, वो शख्स जो मसाइब को याद रखे और नेमतों को भूल जाए, इसको कनूद कहते हैं। अपने ऊपर लेके सोचिए, सिर्फ इस दवाजी जिंदगी के मसाइब भी तो नहीं याद करती शौहर के सामने, और कभी नेमत का जिक्र नहीं करती रब के सामने, माँ बाप के सामने, आपने मुझे दिया क्या, आपने मेरे लिए किया क्या? कनूद है फिर वो शख्स। इसी तरह अबू बकर वास्ती कहते हैं कि जो अल्लाह की नेमतों को इसकी नाफरमानियों में सरफ करे वो कनूद है। इस मिसाल को भी अपने ऊपर लेके सोचते हैं, क्या मैं ऐसी तो नहीं हूँ? کہ اپنے رب کی نعمتوں کو اسی کی نافرمانیوں میں استعمال کرتی ہوں؟ اسی طرح امام ترمذی کہتے ہیں کہ جو شخص نعمت کو دیکھے اور منعم یعنی نعمت دینے والے کو نہ دیکھے وہ کنود ہے. آپ تینوں کو جمع کر کے دیکھیے, انتہائی ناشکرا انسان ذہن میں آتا ہے. نعمت پہ نظر ہے, دینے والے کو سوچتے ہی کچھ نہیں. اور یہ ہم اللہ کے معاملے میں بھی کرتے ہیں, انسانوں کے معاملے میں بھی کرتے ہیں. تو ان الانسان لربہ لکنود, اور اس کے اس کنود ہونے کی گواہی کیا ہے؟ وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ, اور وہ خود اس پر گواہ ہے. ہی نوز ہم سیلف بیٹر دین ادرس. انسان کو اپنی اس حالت کا خوب پتہ ہے. جب اپنی ذات اور اپنے نام کے لیے کچھ کام کرتا ہے تو اس کی کوششیں, اس کی بھاگ دڑیں کیا ہوتی ہیں, اور جب وہ اللہ کے نام پہ کوئی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا ان پٹ کیا ہوتا ہے. اپنا کام ہوتا ہے, اپنے بچے کی شادی ہوتی ہے, اپنے گھر کا کوئی موقع ہوتا ہے, کبھی کوئی کچھ نہیں کہے گا. کوئی کہے نہ کہے, کہتے ہیں مجھے پتا, آئی ہیو ٹو, مجھے کرنا ہے. اور دوسرا کے کہتے ہیں کہا ہی نہیں, بتایا ہی نہیں, پوچھا ہی نہیں, اہمیت ہی نہیں دی. انسان کا اپنا عمل گواہ ہے. اب یہ گواہ کون ہے؟ ضمیر. پیچھے پڑ چکے ہیں سورت قیامت میں کہ بل الانسان ولا نفس ہی بصیرہ ولو القا معذیرہ. انسان خود ضمیر. دوسرا اس میں گواہ کون ہے؟ انسان کے اعمال. اس کے عمل یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ناشکر ہے. تیسری چیز, بہت سے کافر خود اپنی زبان سے اعلانیہ ناشکری کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں خدا, ہم مانتے ہی نہیں. کون سا گاڈ, یہ تو کوئی نیا نظریہ ہے, اٹس اے نیو تھنگ. ہاں, پھر اسی طرح سے ایسے لوگ اپنی زندگیوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں گزار کر اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں. اگلی آیت میں اسی ناشکری کے رویے کی بات آ گئی کہ وَإِنَّهُ لِخُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, اور بے شک اس مال کی خوب میں بڑا شدید ہے. انسان کے اندر مال کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ وہ اس وقت میں چور ہے. دیکھیے, ایسے نہیں لگتا کہ جیسے کسی نے دکھتی رگ پہ پاؤں رکھ دیا. غم, ہم, کوشش, فکر, ارادے, پلان, مال مال مال. اتنی محبت ہے اس کو مال سے کہ اسی کی شدت میں اتنا چور ہے کہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے, حلال اور حرام کا فرق بھول جاتا ہے. یہ بھی بھول جاتا ہے کہ کہاں مال لگاؤں گا تو فائدہ ہوگا کم, اور کہاں لگاؤں گا تو زیادہ ہوگا. خیر کا لفظ مال کے لیے استعمال میں سورہ بقرہ 180 میں بھی آیا, ان طرح کا خیر ان الوصیت, کہ اگر کوئی مال چھوڑے تو پھر اس کی وصیت کرے. اور معنی بھی پیچھے اسی کے, حالانکہ خیر بھلائی کو بھی کہتے ہیں. لن تنالوا البر, بر کے لفظ میں آتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ انسان مال کی محبت میں نہایت حریص ہے اور بخیل ہے. اور مال کی جتنی محبت شدید ہوگی اتنا انسان بخیل ہوگا. تھوڑا مال ہوتا ہے نا, شیئر کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی آپ کے ایسے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں, کم کھانے والے. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے دال سبزی کھا رہے ہوں, اتنے میں مہمان آ جائے یا مہمان کے آنے کی خبر ہی مل جائے, وہ کہیں گے بسم اللہ آ جاؤ, ہمارے ساتھ ہی بیٹھ جاؤ. اور اگر کبھی کھانے میں پیزے اور برگر اور میک ڈونلڈ آ جائیں تو بھی شیئرنگ مشکل ہو جاتی ہے. انسان کا جتنا مال آتا ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ مال دل میں آ جاتا ہے. تو دل میں جب مال آ جاتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے. تھوڑے مال کے ساتھ دینا آسان ہوتا ہے, غم کوئی نہیں ہوتا. آپ اس کو لوگوں کی ٹرمینالوجی میں ایسے کہہ لیں کہ لائبلٹیز ہی نہیں اتنی ہوتی. جو ہے چلے شکر ہے, شام کا کھانا ہے, بچوں کی فیس کے پیسے ہیں, دیکھیں گے جو ہوگا کر دو آگے. جتنا انسان کا مال بڑھتا ہے نا, اتنے اس کے غم ہم تکلیفیں بھرتی ہیں. ہائے کیا ہوگا, ہائے وہ پیمنٹ دینی ہے, وہ بل دینا ہے, ادھر کس جانی ہے, ادھر جانی ہے. اور وہ بیچارے اپنے زوم میں سچے ہی ہوتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے. ان غریبوں کو کیا پتا ہمارے کیا مسئلے ہیں. تو ان الانسان لخب الخیر لشدید. اور ہم خوش قسمت کہتے ہیں اس کو جو بڑا مالدار ہے, بہت مال ہے. حالانکہ بلیو می, قریب سے دیکھا ہوا ہے, جتنا ذاتی طور پہ خوش وہ لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس رزقن کفاتہ. حدیث میں آتا ہے خوش قسمت وہ ہے کہ جس کو کفایت کا رزق دیا گیا. اللہ کسی کے آگے سوال نہ کروائے, ضرورت پڑے اس وقت بندے کے پاس مال ہو. جتنی ضرورت ہے اتنا ہے, کھانے کا وقت ہے کھانا ہے, کہیں جانے کا وقت ہے ٹکٹ کے پیسے ہیں, گھر میں رہنا ہے اس کے رینٹ کے پیسے ہیں, دیٹس اٹ. اور تھوڑا بہت انسان کی ضرورت کے لیے. ایسا بندہ بادشاہ. فرمائے کہ جس کی لسانن ذاکرن, جس کی زبان ذکر والی ہو, اللہ کے ذکر سے تار ہو, اور جس کی بیوی دین کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والی ہو, وہ تو ملک ہے, وہ تو بادشاہ. آپ سوچیے کہ اسلام کس طرح سے ان چیزوں کو پیچھے کرتا ہے. اور مال کی محبت کو صرف ایک ہی چیز توڑ سکتی ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں فرما دیا کہ انہ لحب الخیر لشدید. انسان مال کی محبت میں اتنا شدید ہے, حالانکہ کیا اس کو نہیں پتا. अफला यालमु, इतना नादान, इतना अनजान, इतना भोला कि इजाबु सिरमा फिल कुबूर, वो वक्त क्या उसको नहीं पता जब जो कुछ कब्रों में है वो निकाला जाएगा। ये है चीज माल की मोहब्बत के बुत को तोड़ने वाली, कि इंसान कभी कब्र से निकलते वक्त के वक्त को सोच ले। वहुस्सिला मा फिस सुदूर, और हासिल कर लिया जाएगा जो कुछ सीनों में है। सीने की पोशीदा बातें जाहिर कर दी जाएंगी। और इन्ना रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल खबीर, बेशक इनका रब इनके हाल से उस दिन खूब बाखबर होगा। आज भी बाखबर है, लेकिन जो उस दिन की खबरें होंगी वो तो बड़ी, बहुत बड़ी खबरें होंगी। कब्र से निकलते वक्त ही जब उसको अपनी पिछली जिंदगी के सारे अमाल का हिसाब देना पड़ेगा, फिर क्या बनेगा? फिर उसको अंदाजा होगा कि मैं क्या करता था। अब देखिए, बुसीरा का लफ्ज आइन सारा से, असारा किसी को उठा के खड़ा कर देना, बुईसा के मानों में नुसीरा और बुईसा। और हसीला का लफ्ज उर्दू में भी आप बोलते हैं, हासिल करना, हसूल। इस चीज का हासिल क्या है? सीने की बातों को जाहिर करना और खोल देना, मुजीजा व बुजीना के मानों में। क्या बात समझ आई कि सोचो, जो रब कब्रों से निकाल ले, उनके सीनों के छुपे हुए राजों को जान ले, क्या वो हर इंसान की किसी चीज को नहीं जानता होगा? कोई चीज छुपा सकते हो? कितना था कितना नहीं? पीछे चूंकि बात माल की हो रही है ना, तो इसको माल पे रखिए। हम गरीब रिश्तेदारों से छुपा सकते हैं, हम ढीला से मुंह बना के कह देंगे आजकल कारोबार ही नहीं अच्छा, इकोनॉमी डूब गई, डॉलर का रेट ही गिर गया, और ये हो गया वो गया, वो बेचारे कुछ नहीं कहेंगे। बूढ़े माँ बाप है, उनके सामने हम जाके रोने रोएंगे, हमारी तो पूरी नहीं पड़ती, मुमकिन है, लेकिन अल्लाह से कैसे छुपेंगे? उसको तो इतना भी पता है कि बैंक में कितना है, लॉकर में क्या छुपाया हुआ है। उसको तो ये भी पता है कि हमने आगे के लिए प्लान किया क्यों है, इन्वेस्ट करने के लिए क्या छुपा के रखा हुआ है, और कहाँ के क्या है। तो जब एक इंसान इतनी जानने वाली जात से अपने माल को छुपाता है, तो बताओ कि क्या वो उससे छुपा सकेगा? आप देखिए कि ये है कुरान का वो नुक्ता जिसके लिए बहुत सारे लोग इसको सुन नहीं पाते हैं, कि ये डायरेक्ट हिट करता है। ये कुरान तो बंदे को नंगा करके रख देता है, और इस खूबी को बहुत सारे लोग फेस नहीं कर पाते। ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे चेहरा बड़ा खूबसूरत हो तो आईना देखना अच्छा लगता है, और चेहरे पे पिंपल्स हो, बाल निकले हो, तो आईना देखना मुश्किल लगता है। फिर वो कहते हैं नहीं, मुझे नहीं आईना देखना, मैं नहीं देखती। कुरान ही का आईना है। अगर आमाल खूबसूरत है, अखलाक खूबसूरत है, अदाएं खूबसूरत है, तो बार बार दिल करेगा इस कुरान के आईने में से गुजरो। ऊपर कुछ ना हो लेकिन दिल में खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र मेरा ही है। ऐसा बंदे को कुरान की महफिलें अच्छी लगेंगी। एक दिन से तो तसल्ली नहीं होती, 2 दिन तो कम लगते हैं, 3 तो कुछ भी नहीं। वो कहता है कोई एक दिन ऐसा ना हो जिसको मैं ना देखूं इस आईने को। लेकिन जिसको अपने अंदर ऐब और कमियां और अंदर की गंदगियां बाहर की दिखती हैं, तो फिर वो कहता है सॉरी आई कैंट। ये बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है। तो आप देखिए कि ये सूरत हम सबको किस तरह लेकर चलती है। फिर दूसरी बात देखिए कि सूरत ने हमें ये भी बता दिया कि माल अच्छा है लेकिन माल की मोहब्बत बुरी है। और आपको पता है कि लफ्ज माल क्या है? माल यमीलू मैलन, मेलान उर्दू में बोलते हैं ना, हर वो चीज जिसकी तरफ इंसान का झुकाव हो, इंक्लाइनेशन। आपने सुना होगा गांव के लोग अपने जानवरों को माल डंगर कहते हैं, क्योंकि उनके दिल उनमें लगते हैं। तो अब हम अपने आप से पूछें कि मुझे माल से कितनी मोहब्बत है। मौलाना रूमी का नाम आपने सुना होगा, फारसी का उनका एक शेर है बड़े खूबसूरत, कहते हैं कि आप अंदर जेरे कश्ती पुश्ती अस, आप दर कश्ती हलाक कश्ती अस। क्या कहते हैं? कि पानी जब तक कश्ती के नीचे रहे तो कश्ती का मददगार है, पानी में चलेगी ना। और कहते हैं आप दर कश्ती हलाक कश्ती अस, के मगर जब यही पानी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती को ले डूबता है। माल क्या है? पानी। कश्ती क्या है? आखरत की जो तैर रही है। बाहर रहेगा पानी, दुनिया बाहर रहे, उसके अंदर आखरत की कश्ती चलाइए, तो इंशाल्लाह ये माल तो आपके पार है, ले लेके आपको उड़ता है। ये माल तो आपके लिए अल्लाह ताला की रहमत है, जिसकी वजह से आप दूसरों से बेनियाज होकर अल्लाह के हुक्म से अपनी जरूरियात को पूरा कर लेते हैं। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिल से माल की मोहब्बत निकाल दे, और जितनी जरूरत है उतनी रखे। आप देखिए ना, हर चीज की एक हद होती है ना। अल्लाह ने बहुत सारी हमारे अंदर चीजें डाली हैं एक खास हद तक, लेकिन अगर हम उसी के ख्यालों में खोए रहे हैं, उसी के अंदर पड़े रहे अपने आप को, उसी के अंदर ख्वाब, उसी के, कोई भी नेमत देखिए, खाने की, खाना अच्छी चीज है, लेकिन अगर हर वक्त खाना खाना ही दिमाग पे सवार हो तो फायदे की चीज होगी? जिनसी जरूरत पूरी करना एक इंसान का हक है, अगली नस्ल का बीज डलेगा, लेकिन अगर हर वक्त जहन में यही चीजें होंगी तो अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो बस यही समझिए ना, इस्लाम मेरी और आपकी दुनिया का दुश्मन है, और ना ये कहता किसी को दुनिया बनाकर सोचे। और इंशाल्लाह ताला जब हम अपने ऊपर इन चीज़ों को लेंगे तो फिर हमें ज्यादा समझ आएगा, हम इन आयतों की तिलावत सुनते और साथ साथ अपना मुहासबा करेंगे। किसी दूसरे के मुहासबे से हमें कोई फायदा नहीं होगा, हमें फायदा कब होगा? जब हम अपना मुहासबा करेंगे।
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ।
कोई फीलिंग आई आपको ये जुमला सुनते हुए कि इन रब्बहुम बिहिम यौम इज़िल खबीर? सोचिए ज़रा, क्या मुझे अल्लाह ताला के खबीर होने का यकीन है? हुस्सिला माफ़ी सुदूर, जो मेरे सीनों की बातों को ले लेगा। ज़रा सा हमें शक पड़ जाए ना कि मेरी ये बात लीक हो जाएगी, या किसी ने मेरी बात जो मैंने उससे शेयर की उसको एक्सपोज कर दिया, शायद कभी इसकी शक्ल भी ना देखे। हल्का सा एक गुमान को डाल देता है कि आजकल मुसलमानों के फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, और आजकल ऐसे टीवी आ गए कि जो घर की सारी बातों को सुन सुन के आगे सुना रहे हैं। एक ऐसा खौफ आ जाता है अल्लाह की पनाह, लेकिन वो ज़ात जो पकड़ने पे आए तो कोई बचा नहीं सकता, उसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? इसलिए हर इंसान अपने ऊपर लेकर सोचे, अल्लाह की ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारी ज़िंदगी के हालात को इस तरह जानता है, जिस दिन क़यामत की सूरत में वो तुम्हारे नामे अमाल तुम्हारे सामने करेगा, तो उस वक्त क्या होगा?